الفاظ کی وضاحت. تو اب آیات کی بجائے صرف جو مشکل الفاظ ہیں اور نئے الفاظ ہیں ان کی ہم وضاحت کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ اب آنے لگی ہے کافی, اور انشاءاللہ باقی جو کمی ہوگی وہ تفسیر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. بے شک اللہ نے چن لیا ہے. تو انا جب آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے, اور انا یہ کہ, اور کبھی کبھی وہ بھی بے شک کے معنی بھی دیتا ہے. تو استفا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, سواد فا و, اور اس کے معنی ہے پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر کسی کو چن لینا, کسی کا انتخاب کر لینا. بے شک اللہ نے پسند کر لیا, چن لیا. پھر یہ جلیل القدر پیغمبروں کے نام ہیں, اور کس پر ان کو چنا, دنیا والوں پر, یعنی عام دنیا کی نسبت ان کو خاص فضیلت دی, جس میں آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, آل ابراہیم اور آل عمران. تو آل ابراہیم اور آل عمران جو ہے ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو آل میں آل کس کو کہتے ہیں, ہاں, جس میں جو ہے وہ فالوئرز بھی شامل ہوتے ہیں. تو دنیا والوں پر عالمین, تو یہ عالمین پہلے کب پڑھا تھا, الحمدللہ رب العالمین, دنیا والوں پر. اور اگر عالمین ہوتا پھر کیا ہوتا, یعنی عالمین عالم دنیا کے لیے آتا ہے. عالمین لام کے نیچے زیر ہو تو کیا ہے, علم کے لیے ہے نا, عالم علم رکھنے والے. عالمین اور عالمین دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. ذریتن, ذریتن جو ہے اس کے جو ہے وہ دو روٹ ورڈ بتائے جاتے ہیں. ایک تو زال را را, وہ کہتے ہیں کہ زر سے ہے یہ, اس کے معنی چھوٹی چونٹیاں. ذرہ اس کا واحد ہے, اسی سے ذرہ بھی ہے چھوٹا سا, اسی سے ذریا یعنی چھوٹی اولاد. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا, وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, تو کیا مطلب تھا آپ نے اس کا, کیا پڑھا تھا کہ پہنچ چکا اس کو بڑھاپا جبکہ اس کی اولاد جو ہے وہ چھوٹی ہے. تو یہ سورت بقرہ میں آپ نے یہ پڑھی تھی آیت نا 266, کب کس شخص کی بات تھی جس کا باغ ہے بڑا خوبصورت اور پھول پھل دے رہا ہے, اور بڑھاپے کی حالت میں جب اس کو بڑھاپا آیا, اس کی اولاد تھی چھوٹی, پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایک احسار آ گیا, اس کا اس وقت پڑھا تھا. تو کہتے تو چھوٹی چونٹی کو ہیں, لیکن اسی سے یہ ساری ہر اولاد کے اوپر اس کا استعمال ہونے لگا. چھوٹی چھوٹی جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں, اسی طرح اولاد بھی بڑھتی جاتی ہے نا, لڑکوں کی لڑکیوں کی. تو دوسرا کیا ہے, زال را حمزہ, اس کے معنی کیا ہیں, جیسے ذرا الارض, زمین میں کچھ بونا. تو یہ بھی جو ہے یہ لفظ اولاد سے عام ہے, اور اس کے معنی بھی کیا ہے کہ اولاد کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جس طرح زمین میں کچھ بوتے ہیں تو پھلتی پھولتی ہے کھیتی, اسی طرح انسان کی جو سرشت ہے یا اس کا جو جسم ہے وہ بھی تو وہی کچھ ہے جو مٹی ہے نا. تو اسی طرح اولاد بھی ایک لفظ ہے ذریت کے علاوہ, اگر دیکھیں اولاد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے نا. اور اولاد کیا ہے کہ ولد سے ہے, جنا ہوا بچہ, اولاد اس کی جمع ہے. تو بہرحال کل بات اگر آپ سمجھے تو کیا ہے کہ ایک تو ہے ذریت, جس کو جیسے پوتے ہیں نواسے ہیں اس میں سب شامل ہیں, اور ایک ہے اولاد, اولاد میں بھی بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اور آگے تک جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. ذریتم بعدہا من بعد, کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں, ایک دوسرے کی اولاد ہے, یعنی ایک لنک ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی صفات کا بھی موقع کی مناسبت سے ذکر ہے. سمیع جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, اور علیم کا, اور سمیع اور علیم کا وزن ہو تو خوب سننے والا, خوب جاننے والا. اس قالت, قالت جو ہے آپ بتائیں گی کہ اس کا پہلا صیغہ کیا ہے, قالا قالا, پھر آگے قالو, اور پھر کیا ہے قالت. تو یہ کس نے کہا, ایک عورت نے کہا. تو جب ایک عورت نے کہا, وہ کون تھی, امراتو, بیوی تھی امرات. آپ نے پڑھا ہے نا پہلے بھی یہ کہ امرات جو ہے, جب ذکر ہمیں ملے گا امرا کا, امرا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسے کہتے ہیں, मरुन और इमरातुन, मरुन किसे कहते हैं? आदमी को, और इमरातुन बीवी को, और वो जिसमें मुरब्बत हो। और अगर रजुलुन के मानी क्या है? मजबूती के लिए आता है, आदमी की मजबूती और कुव्वत का इजहार करने के लिए रजुलुन कहते हैं, है ना। और उसका ऑपोजिट क्या है? निसा। शाबाश। तो इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा फर्क समझ में आता जाना चाहिए कि जब कहा बीवी ने, किसकी थी? इमराना, इमरान अलैहिस्सलाम की, क्या कहने लगी? रब्बे, ए मेरे रब, इन्नी नजर तू, बेशक मैंने नजर मानी है। तो नजर मानना क्या होता है कि अपने ऊपर खुद से कुछ चीज वाजिब कर लेना, जो अल्लाह ने उस पर वाजिब नहीं की, तो आप कुछ अपने ऊपर वाजिब कर ले कि अगर मुझे ये चीज मिल जाती है तो मैं ये काम करूंगी। तो फिर जब वो मान ले नजर, तो उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन नजर ऐसी माननी चाहिए जो इंसान की बिसात में हो, उससे बढ़कर नहीं माननी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग कह देते हैं कि मैं 1,000 नफल पढ़ूंगी, अब बढ़े नहीं जाते, अब क्या करें, अब वो नजर बात तो पूरी हो गई है, या पैदल हज करेंगे, पैदल उमरा करेंगे, वो होता नहीं, या और बहुत सी ऐसी बातें जो है नहीं हमारी हिम्मत के अंदर, या इतने रोजे रख लूंगी, है ना। तो मानी जा सकती है अपने ऊपर वाजिब कर लेना, लेकिन ये कि अपनी जो बिसात है उसके मुताबिक। तो लका तेरे लिए, माफी बतनी, बतन जो है इसका रूपवर्ड है यही बा तो ए नून, और ये आमतौर पर पेट और हर चीज का अंदरूनी हिस्से उसके लिए आता है, बतन पेट के लिए और जो उसका अंदरूनी हिस्सा है उसके लिए, अंदरूनी जानिब को बतन कहते हैं। मुहर्ररन, मुहर्ररन हारारा, इसके मानी है दुनेवी उमूर से आजाद और इबादत के लिए वक्फ कर दिया गया हो, यानी ऐसा बच्चा जिसे वालदैन ने तमाम जिम्मेदारियों से सुपुर्दोश कर दिया हो ताकि वो यकसू होकर अल्लाह की इबादत कर सके। और उस जमाने में ये दस्तूर था कि जो वालदैन जिन बच्चों के लिए मन्नत मानते थे ना, तो फिर उसको वक्फ कर देते थे, जैसे बैतल मकदस में या हैकले सुलेमानी में छोड़ जाते थे। और फिर जो हैकले सुलेमानी के मुंतजमीन थे या उसकी इबादतगाह के जो जिम्मेदार थे, उनको कहते थे काहिन, उनके सुपुर्द कर देते थे, तो फिर वो उनकी सारी जिम्मेदारी जो थी वो उठा लेते थे। तो मुहर्ररन यानी मानी क्या है कि आजाद होगा, उसको और कोई काम नहीं करना, कमाने का, खिलाने का, सारी जिंदगी बैतुल मकदस की खिदमत के लिए उसकी वक्फ होगी। अभी पेट में है बच्चा और माँ ये दुआ करती जा रही है, मन्नत मानती जा रही है, और साथ कहती जा रही है फतकब्बल मिन्नी, तुम मेरी तरफ से इसको कबूल कर ले, फतकब्बल। फतकब्बल जो है इसका रूट वर्ड क्या है? मानी क्या है कि कबूल करना, कि अल्लाह तो इसको कबूल कर ले, ये ऑर्डर का सीगा है। इन्नका अंता समीउल अलीम, बेशक तू खूब सुनता भी है, जानता भी है। फलम्मा वदअतहा, तो जैसे होता है ना कि हमल, हमल का मतलब होता है उठा लेना। आपने सूरत अल बकरा की जो बिल्कुल आखिरी आयतें पढ़ी थी, उसमें आपने ये बात पढ़ी थी कि हमल होता है वो जिस मीम पर सुकून हो, कि ऐसा बोझ जो पेट के अंदर हो, बोझ बबातिन। और हिम्ल होता है उठाने वाले की इस्तात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मादी बोझ, जैसे कोई गठड़ी है, बैग है, जो कुछ भी है। तो हम का मतलब क्या है? उठाना पेट के अंदर बोझ। और वदा इसका ऑपोजिट है कि उसको रख देना, उतार देना, जन्म दे देना। फलम्मा वदा अत हा, अब देख ले ये भी वदा अत, कैसे पता चल रहा है कि ये औरत के लिए आ रहा है? वैसे तो औरत ही जन्म देती है, कैसे? ता है और ता पर सुकून है, और ये माजी का चौथा सीगा है। जैसे आपने पीछे पढ़ा ना, पाला पाला पालू पालत, असल में ता पर वहां भी सुकून था, आगे मिलाने के लिए उसके लिए जेर दिया गया है, यहां पे भी इसके ऊपर सुकून है। वदा अत, उसने उसको पैदा किया यानी उसको जन्म दिया। पालत, फिर वही वाला चौथा सीगा, उसने कहा रब्बे है मेरे रब, इन्नी वदा तूहा, अब वदा तू, मैंने इसको जन्म दे दिया है, मैंने इसको रख दिया है, यानी पेट से अब ये मेरी जिम्मेदारी जो है उससे मैं फारिग हो गई हूं। तो वदातुहा, मैंने जब इसको पैदा किया तो ये क्या था? उनसा, बेटी, मुअन्नस। तो ये तो लड़की पैदा हो गई है, इन्नी वदातुहा उनसा, बच्ची पैदा हुई है। वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु, आलमु क्या है इसम तफसील, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह को खूब खबर थी, बिमा हुआ दात, कि उसने क्या जना, उसको क्या पैदा हुआ। वलैसा ज़करू, और नहीं है लड़का कल उनसा, लड़की जैसा, मुज़क्कर मुअन्नस जैसा नहीं होता, है ना, क्या मतलब है कि लड़का लड़की की तरह नहीं होता। वो इन्नी, और बेशक मैंने, समय तुहा, इसका नाम रख दिया है, समय तु, सीन मीम वो, इसके मानी है नाम रखना, इसी से इस्म भी है, इसी से अस्मा भी है, जो लोग नाम रखते हैं ना, तो बेशक मैंने इसका नाम रख दिया है मरियमा, मरियम। मरियम जो है, ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि मीम रा और या, ये इसका रूट वर्ड है, और ये इनकी इब्रानी जबान में जो दूसरी जबान थी उसमें इसके मानी है आबिदा के और रब की खादिमा के। बड़ा खूबसूरत है इसके मानी, आबिदा और रब की खादिमा। वइन्नी, और बेशक मैंने, वो ईजुहा, मैंने इसको पनाह दी है, या मैं इसको सुपुर्द करती हूँ, ऐन वाव ज़ाल, यानी मैं इसको पनाह में देती हूँ, बिका तेरी, काफ की जमीर किस लिए है, अल्लाह ताला के लिए, वज़ुर्रियतहा, और इसकी औलाद को, हा की जमीर क्या बता रही है, किसकी बात हो रही है, हजरत मरियम की बात हो रही है, यानी इसकी औलाद को भी, किससे मैं बचाना चाहती हूँ, मिन शैतान रजीम, शैतान से और रजीम से। तो शैतान का रूपट क्या है, तो ये दोनों इसके रूटवर्ड हैं, और दूसरा रजीम का, शाबाश, फतकब्बलहा, फिर इसको कबूल कर लिया, रब्बुहा, उसके रब ने, बे कबूल इन हसल इन, अच्छा कबूल करना, हसन हसन हुसन एहसान, ये बहुत अच्छे मानी में इस्तेमाल किया जाता है, एहसान नेकी का सबसे आला दर्जा होता है, हुसन भी इसी से है, ब्यूटी, और हसन भी अच्छे से, एक होता है ना कि अच्छा कराहत से किसी को कबूल करना, चलो दिल भी नहीं चाहता, इतना अच्छा भी नहीं है, चलो फिर भी ठीक है, चलो आ जाओ, नापसंदीदगी से नहीं, ये कबूल इन हसन। वह अम बताहा, और इसको उगाया, अम बताहा, अम बताहा जो है इसका रूटवर्ड क्या है, नबता, शाबाश, नून बा पा, इसका रूटवर्ड है, मानी है परवरिश करना, परवान चढ़ाना, उगाना। अच्छा आप देखें कि यहाँ पे आ रहा है कि फिर इसको उगाया नबातन, नबात, नबता जो है ना, ये पौधे को कहते हैं, जैसे पौधा नहीं होता, जैसे जमीन से पौधे को जब उसको बीज लगाया जाता है, फिर पानी और गोडी और खाद और जमीन की ख्याल और सब कुछ, तो फिर उसको उसके लिए भी आता है कि पौधे की परवरिश करना, तो अब उसके हजरत मरियम के लिए भी आ रहा है कि अम्बतहा नबातन हसनन, कि उसकी खूब अच्छी जो है वो परवरिश की, उसको बड़ा अच्छा, अच्छी लड़की बनाकर जो है वो उठाया, खड़ा किया। तो आप देखें कि जिस तरह पौधे की परवरिश के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आजकल बहार का मौसम है ना, है ना, तो आजकल क्या हो रहा है, मार्केट्स में आप जाते हैं तो खुशबू से, बहुत खुशबू ही खुशबू है ना, और क्योंकि पौधे और जो है वो आपको गमले नजर आ रहे हैं, और बाहर भी आपको हरियाली महसूस होने लगी है ना ऐसे, तो और पहले स्नो के मौसम में ये सब पौधे गमले कहाँ थे, बंद थे ना सब, कहाँ से आप लोग गमले वगैरह खरीदते हैं, नर्सरीज, तो जो भी प्लांटिंग की या पौधों की, फ्लावर्स की नर्सरीज थी, वो सब बंद थी, अब वो कारोबार सब अरूज पे आ रहा है। और आप देखें कि जो लोग भी ये काम करते हैं उनको अंदाजा होगा कि पौधों को उगाने के लिए एक तो होती है जमीन, मट्टी अच्छी चाहिए, और आबो हवा, हवा अच्छी हो, फिर उसके अलावा खाद हो, इसके अलावा जो मालिक होता है ना उसकी निगहदाश्त बहुत जरूरी होती है, कि उसकी हिफाजत करे, उसकी निगहदाश्त करे। तो अल्लाह ताला ने जब उसको इतना अच्छा कबूल किया कि वह अम्बतहा नबातन हसनन, खूब अच्छी उसकी जो भी जरूरियात की जो कफालत थी सारी की, और बहुत अच्छी तरह की, बड़ी बखूबी की, वह कफलहा, तो कफलहा जो है इसका रूटवर्ड है काफा लाम, किसी के नान नुस्खे और खबरगिरी का जिम्मेदार होना, किसी का जामिन होना, कफील बनना, तो उसका कफील बना दिया, उसके खाने पीने, उसकी निगेदाश्त, हिफाजत, तो उसका कफील बना दिया किसको? जकरिया, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम कौन थे? ये इनके खालू भी थे और पैगंबर भी थे, और इन्हीं के बेटे का नाम क्या है? हजरत यहया अलैहिस्सलाम। कुल्लमा, जब भी, जब कभी, कुल्लमा मानी देता है जब कभी और जब भी, जब भी, जब कभी भी जो है वो दाखिल होते, दखल अलैहा इस पर दाखिल होते। जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम अल-महराब, महराब में, महराब जो है इसका रूट वर्ड है हाराबा। मुझे जैसे बहुत सारी चीजों के आप रूट वर्ड पढ़ते हैं ना, जब इसका पढ़ा मुझे बहुत मजा आया था, जब कभी पढ़ा था, कि हरब वैसे तो कहते हैं जंग को, तो मुझे ये था कि मस्जिद के अंदर महराब, तो उसके लिए फिर ये जंग का रूट वर्ड क्यों है? तो इसके मानी क्या है कि वैसे तो इसके मानी है सामान लूटना, जंग वगैरह सब, लेकिन मस्जिद की महराब जो है इससे मुराद क्या है कि वो कमरा, वो गोशा, वो जगह जहां इंसान शैतान और ख्वाहिशात नफसानी से जंग करता है, शैतान और ख्वाहिशात नफसानी से जंग करने की जगह, या इस जगह में खड़े होकर इबादत करने वाले पर यह हक है कि वो दुनियावी कारोबार और परेशान ख्यालियों से यकसू हो जाए, यानी अब बाकी सब चीजें अब छोड़ दे। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये मेहराब का लफ्ज जब लोग सुनते हैं तो बिलअमूम फौरन समझते हैं कि मस्जिद के, मस्जिद में वो जो जगह होती है जो इमाम के खड़े होने के लिए ऊंची बनाई जाती है वो है, आमतौर पर लोग वो समझते हैं। कहते हैं ये वो नहीं है बल्कि सवामे और कनीसों में असल इबादतगाह की इमारत से साथ मिलाकर सतह जमीन से काफी बुलंदी पर जो कमरे बनाए जाते हैं जिनमें इबादतगाह के मजाविर, खुदाम और मोतकिफ लोग रहा करते थे या रहा करते हैं, उन्हें मेहराब कहा जाता है। तो इसी किस्म के कमरों में से एक कमरे में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी मोतकिफ थी। समझ आ गई बात की? क्योंकि वो मेहराब में कैसे होती, वहां इमाम खड़ा होकर तो नमाज और सब कुछ, और आप खाना काबा भी देखें कि वो भी कितनी ऊंचाई पर है कि सीढ़ियों के जरिए उसके अंदर जो है वो जाया जा सकता है, दरवाजे उनके देखे कितनी बुलंदी पर हैं, है ना, तो ऊंचा है। तो यहां पर भी क्या है कि सतह जमीन से काफी बुलंदी पर जो कमरे हैं ना उसके लिए मेहराब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मस्जिद के अंदर मेहराब का मतलब क्या है कि शैतान की वहां जगह नहीं हो सकती, है ना। तो वैसे भी मस्जिद के अंदर आप दाखिल हो जाए तो फिर नफसानी ख्वाहिशात हैं और शैतान है या और जो भी दुनिया के ख्यालात और परेशान ख्यालियां हैं उन सब से हमें भी छुटकारा पा लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए बाकी गमों को, ख्यालों को। तो जब कभी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल होते, वजादा, वजादा का रूट वर्ड क्या है? हाँ, वजादा यही है, शाबाश। इंदहा रिज़्क़न, तो इसके पास रिज्क पाते। हा की ज़मीर किस लिए है? मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। अगर यहाँ पे फर्ज किया हु होता तो मानी क्या होते? किसी आदमी का जिक्र हो रहा है, हा बता रही है कि औरत का जिक्र है। तो उसके पास जब आते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो क्या नजर आता उनको? रिज़्क़न, रिज़्क। तो इसके बारे में आता है कि रिज्क से मुराद जो है वो एक तो मानी ये है कि बेमौसम का फल, जैसे सर्दी में गर्मी का और गर्मी में सर्दी का, वो उनको वहां पे जो है वो नजर आता। दूसरे इसके मतलब इसी के अंदर ये भी है कि जैसे जो है वो उनको ऐसा फल नजर आता जो कि बगैर मौसम के भी है और आम जैसे नजर नहीं आता, आमतौर पर मिलता नहीं है। ये भी हो सकता है कि जैसे उनके लिए जन्नत में से आता हो या खास तौर पे उसका जैसे एक एहतमाम के साथ ना। तो दूसरी बात क्या है कि इससे मुराद इल्म है, इल्मो मार्फत की बातें, इल्मी सहीफे, इल्मो मार्फत की बातें, इल्मी सहीफे। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का भी एक कॉल है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि इस कलमे से जीता है जो खुदावंद की तरफ से आता है। तो मतलब जैसे अच्छी बातें, अच्छी चीजें, तो उनके पास उनको रिस्क नजर आता। काला पूछते या मरियम, ए मरियम, अन्ना लकी हाजा, ये कहां से आया तेरे पास? अन्ना लकी हाजा, कि ये कहां से आया? अन्ना क्यों कर, कहां से ये तुझे जो है वो मिल गया है। तो आप देखें, आप भी कहीं कोई अच्छी चीज देखती हैं, कोई फ्रूट है, कोई सब्जी है, कोई और भी दुनिया का दौलत माल भी चीजें भी, तो आप पूछते हैं ये आपको कहां से मिल गया, है ना। कुछ भी कोई भी आपको जरा अजीब जरा अच्छी चीज मिले तो आप पूछती हैं कि अन्ना लकी हाजा, कहां से आया। तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को भी इस पर हैरत होती, तो वो उससे ये सवाल करते, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। कालत, कालत का मतलब क्या है, वो कहती, ता बता रहा है कि एक औरत कह रही है, अगर काला होता तो आदमी की बात है, वो कहती है कि ये मेरे अल्लाह के पास से आता है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, यरजुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, के अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज्क देता है। ठीक है, इल्म की बातें हैं या खाने पीने की चीजें हैं। हुनालिका, हुनालिका जो है इसके मानी जगह के भी हैं और वक्त के भी हैं। यानी उसी वक्त उसी जगह भी कह सकते हैं, लेकिन उसी वक्त दुआ दुआ की, जकरिया जकरिया अलैहिस्सलाम ने रब्बहु अपने रब से, यानी अपने रब से दुआ की। देखा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बाद पास वो चीजें देखी और दुआ अपने रब से करने लगे, क्योंकि जो रब उनको दे सकता है इनको भी तो दे सकता है ना। अपने रब से दुआ करने लगे, क्या कहा, कौल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउ दुआ। कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे अता कर अपने पास से पाक औलाद, बेशक तू दुआ सुनने वाला। ये बड़ी मशहूर दुआ है, और ये दुआ है कि औलाद अगर नहीं है किसी के तो उसके लिए ये पढ़नी चाहिए, और वैसे भी मतलब जो है वो ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए, ताकि जो अल्लाह ताला औलाद दे, किसी के पास है भी और हो रही है और जो भी मौजूद है औलाद, तो उसके लिए ये दुआ करना कि अल्लाह उसको जुर्रियतन तय्यबा बना दे। तो बड़ी अच्छी ये दुआ है। तो हब का रूट वर्ड क्या है, वहाबा, इसी से वहाब है देना। लदुन, लदुन जो है ये नजदीक पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जुर्रियतन औलाद है, और तय्यबा उसकी सिफत के तौर पर है, तय्यब अच्छी चीज पाक चीज। इसका क्या रूट वर्ड है तय्यब का, हाँ ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तय्यब। बेशक तू सुनने वाला है दुआओं को, तू ही दुआओं को सुनने वाला है। पना दत्थू, नून डालिया, मानी है पुकारना नदा देना। तो अब आवाज दी उनको, अब हु आ गया यहाँ पे, किसको आवाज दी, ज़करिया अलैहिस्सलाम को, किसने, अल मलाइका, तू फरिश्तों ने। वह हुआ कायमुन, और वो खड़े हुए थे, कायमुन का रूट वर्ड काफ वा मीम, वो खड़े हुए थे, युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे, फिल मेहराब अपनी इबादतगाह में, वो जो इबादतगाह थी ना मस्जिद के साथ ही, उसमें वो नमाज पढ़ रहे थे, अब मेहराब में नमाज खड़े हुए पढ़ रहे थे। क्या आवाज दी, अन्नल्लाह, के अल्लाह, युबशिरुका, वो तुझे बशारत देता है, खुशखबरी देता है, बियाहिया याह्या की। तो अब यहां पर जो है वो याह्या अलैहिस्सलाम का जो है वो जिक्र मिलता है, और के अल्लाह ताला ने आपको जो है वो याह्या अलैहिस्सलाम की जो है वो खुशखबरी दी है। याह्या अलैहिस्सलाम का नाम इंजील में यूहन्ना मिलता है, यूहन्ना। और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ 6 माह पहले पैदा हुए। पैगम्बरों का आप जिक्र देखें कि अल्लाह ताला ने इनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो है वो 6 माह पहले जो है वो ये पैदा हुए, और आपस में ईसा अलैहिस्सलाम का और याहिया अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था, कजन थे, खालाजाद भाई, ये खालाजाद भाई थे। लेकिन इनके साथ जो है वो हुआ क्या, इनको ना एक रकासा के कहने पर इनका सर जो था ना उतार दिया गया। यानी एक पैगम्बर ने दुआ मांगी थी, दुआ मांगने पे अल्लाह ताला ने जो है वो पैगंबर अता की जो बेटा दिया, वो भी चुनावा, बड़ी अच्छी खूबियों वाला। लेकिन ये कि बनी इसराइल के हालात इतने खराब हो चुके थे कि जो है वो रकासा जब नाच रही थी तो पूछा कि तू क्या चाहती है, तो उसने कहा था कि थाली में मुझे रख करना, या उनका सर दे। कहते हैं कि बाबरा उनका एक डाकू था, यानी उसका दे कि इसका दे, तो उसने कहा कि इसका सर मुझे जो है वो चाहिए। तो आप देख लें कि याहिया अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला ने उनको जो है वो दुआओं के, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में दिया, उनकी दुआओं के नतीजे में दिया, और इसके बावजूद जो है वो उनका उनके साथ क्या बनी इसराइल के लोगों ने किया। तो अब क्या है कि बेशक खुशखबरी देता है तुझको अल्लाह ताला यहया अलैहिस्सलाम की, और उनकी ना यहाँ पे आगे सिफात का जिक्र है, चार उनकी खूबियां बताई गई है। नंबर वन क्या है, मुसद्दिकन बिकलिमतिन मिनल्लाह, मुसद्दिकन स्वाद अलकाफ से है कि तस्दीक करने वाले होंगे, कलीमा, और कलीमा से मुराद जो है वो क्या है, फरमान को भी कहते हैं कलम कलमात, लेकिन मुराद यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ताला के एक गैर मामूली फरमान से हुई थी, तो इसीलिए कुरान उनको कलिमतुम मिनल्लाह के नाम से याद करता है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या पता चलता है कि पहली खूबी उनकी क्या, कि वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाले होंगे, और इससे मुराद क्या है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, सही। दूसरी, वसैयदन, और उनके अंदर सैयद यानी वो सरदार होंगे, यानी वो क्या होंगे, सरदार होंगे, यानी अपनी फितरत, अपनी दावत, अपने मिशन के लिहाज से अल्लाह उनको ये खूबी जैसे पैदाइशी तौर पर दे दी। तो सैयद यानी लीडर जैसे होता है ना, और आपको पता ही है ये बात के वाकई बाज लोग जो है जैसे पैदाइशी लीडर होते हैं कि बचपन से उनकी क्वालिटीज सिफात जो है वो होती है, कुछ लोग जैसे कोशिश करते हैं, एक होती है आमद और एक होती है अवर्ध, कोशिश से कुछ होते हैं कुछ वैसे ही पैदाइशी होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको सैयद जो है वो यानी खास तौर पर वो सिफात से नवाजा के उनका सीना दुनिया के लिए शफकत से भरा हुआ था, और उनके अंदर जो थी सतवत थी, जलालत थी, उनकी आवाज और अंदाज में बड़ी हैबत थी, बड़ी उनकी ताबनाक पेशानी थी जो उनकी अजमत और सदाकत की गवाही देती थी, और ये सब बातें। फिर इसके बाद उनकी अगली खूबी क्या है, वहसूरन, हा स्वाद रा, ये फऊल के वजन पर है, इसके मानी है अपने आप को घेरे में लेने वाला, अपने आप को घेरे में रखने वाला, यानी मुराद जो जो शख्स अपने आप को घेरे में रखे, हर वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखे, मुराद क्या है कि दुनिया की लज्जतों से मुनकते होने वाला, अपने आप को जब्त में, कमाल दर्जे के जब्त में रखने वाला। तो वैसे तो आप देखें कि सरदार जो सरदार होता है वो भी बड़ा जब्ते नफ्स रखने वाला होता है, वरना सरदार जो भी लीडर होते हैं जब वो पब्लिक में मूव करते हैं, आते जाते हैं, तो कई किस्म के लोगों से उनका सापका पड़ता है ना, बहुत से लोगों की चीजें वो बर्दाश्त करते हैं, तो सरदार की भी सिर्फ में जब्ते नफ्स पाया जाता है। लेकिन यहां पर अल्लाह ताला ने खास तौर पर फिर इसका जिक्र किया है कि वो जो है वो क्या थे, कि उनकी बड़ी दरवेशी थी उनके अंदर, वो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में भी बड़ी दरवेशी पाई जाती है उनकी जिंदगी में भी, लेकिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी बड़ी दरवेशी की, दुनिया की लज्जतों से फायदा ही ना उठाया। तो ये थी इनकी ये खास सिफत जो अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था, वह नबीयन, और चौथी उनकी सिफत क्या थी, कि वो नबी होंगे, और नबी, नबी का रूट वर्ड क्या है, नून बा हमजा, मिनस सालहीन, यानी नबी के साथ साथ सालहीन की, यानी ऐसे नबी साथ साथ सालहीन में से, मकसद क्या है बताने का, कि वो सिमा उनके अंदर जो सिफात हैं, जो कमालात हैं, वो बड़े आला दर्जे की हैं। ये नहीं अल्लाह ताला यहाँ पे हजरत इनकी जो सिफत बता रहे हैं हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की, तो ये नहीं कि उनको कोई उलूहियत का मकाम हासिल हो गया, इतनी अच्छी उनकी सिफात हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि उनका मामला भी कैसा है, कि हैं वो नबियों में से और नेक लोगों में से। ठीक है, पाला रब्बी अन्ना यकून ली गुलाम, मुन कहने लगे कि क्यों कर होगा, तो यकूनू काना से है, रूपट काफ वो नून है, काना यकूनू, तो क्यों कर होगा ली मेरे लिए गुलामुन बेटा, वकद बलगनी अलकिबारू, बलगा होता है पहुंचना, जबकि पहुंच चुकी है मुझे अलकिबारू बुढ़ापा, कि मेरे बेटा कैसे होगा जबकि बुढ़ापा जो है वो मेरे पास आ चुका है, यानी मैं बूढ़ा हो चुका हूं। वमराती आकिर, और मेरी जो बीवी है, इमरातुन से यानी मेरी बीवी आकिर बांझ है, आकिर जो है इसके लफ्ज़ी रूटवर्ड है आइन काफरा, इसके मानी है काट कर कारी जरब लगाना, किसी को जड़ से जो है वो काटना, जैसे कहते हैं कि अल कल्बुल अकूर, काटने वाला कुत्ता, अकरल नखला, खजूर के दरख्त को जड़ से काट देना। फिर अल्लाह ताला ने जो है कुरान में इसका इस्तेमाल भी किया है, फकज्जबूहू फअकरूहा, तो उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को जब झुठलाया और ऊंटनी की कूंचे काट डाली, है ना, वहां पे फअकरूहा का लफ्ज। तो यहाँ पे भी क्या है कि यानी मेरी बीवी जो है बांझ है, यानी उसके औलाद हो ही नहीं रही, जैसे कोई दरख्त जिसकी जड़ें ही खुश्क हो जाएं, जब दरख्त को जड़ों से काट दिया जाए तो फिर है ही नहीं। काला कजालिक अल्लाहू, कहा कि इसी तरह होगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जवाब दिया गया, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा, यह फलू मा यशा, जैसे वो चाहता है होता है। तो यह फलू का रूट वर्ड क्या है, फाइल नाम। कला रब अली आया, तो उन्होंने कहा कि ए रब, मेरे रब भी है असल में, ए मेरे रब बना दे मेरे लिए आया, निशानी। निशानी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और आप पहले भी पढ़ चुकी हैं के निशानी के लिए और क्या क्या है, किस किस को निशानी कहते हैं। एक तो कुरान की आयतें जो हैं वो निशानी है, और कायनात के अंदर बिखरी हुई जो है वो निशानी है, बिल्कुल सही। और मौजजात जो हैं वो भी जो है वो निशानी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और हैं भी वाकई वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो निशानी है। और इसके अलावा क्या है जी, हाँ, कि वो भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। तो असल में वैसे अगर आप देखें ना, तो कुरान मजीद में जो है वो निशान या निशानी के लिए 8 लफ्ज आए हैं। एक है असर, जिससे आसार है, जैसे कहीं आसार से आपको कुछ मालूम हो। दूसरी है अलामत, हर ऐसी निशानी जो खुद तो वाजे ना हो, लेकिन ये कि दूसरी चीज की, मगर दूसरी चीज की वजाहत करती हो जो पहले से मौजूद हो। अलामत क्या है, जैसे आप धूप देखती हैं, साया देखती हैं, तो आपको अंदाजा होता है, हाँ, सुबह का, शाम का, सिमत का, वक्त का, ठीक है। तो उसके लिए जैसे रात के वक्त सितारे हम देखते हैं तो सिमत मालूम करते हैं, तो ये भी एक अलामत के तौर पे है। तो अलामत किसे है, यानी हर ऐसी निशानी जो खुद तो वाजे नहीं है, मगर इससे किसी और हकीकत का इल्म हासिल हो। रात के वक्त सितारे से हमें वक्त मालूम होता है, सिमत मालूम होती है, या धूप से और साए से भी वक्त और सिमत का अंदाजा होता है। इसी तरह मरीज की अलामत देखी जाती है, अलामत देखकर अंदाजा किया जाता है कि इसका मर्ज क्या है, इसकी तशखीस करना। बादल आते हैं तो बारिश की अलामत है, तो ये है दूसरा लफ्ज। तीसरा लफ्ज है आया, हर ऐसी निशानी जिसमें गौर करने पर इस चीज का भी इल्म हासिल हो और इसके बनाने वाले का भी, यानी उस चीज का भी इल्म हासिल हो और इसके बनाने वाले का भी। जैसे भी आपने बताया, जैसे कुरान करीम का, कुरान करीम की आयतें जो हैं कुरान मजीद की, ये निशानियां हैं, तो इससे अल्लाह ताला का भी पता चलता है और उस चीज का भी, है ना। फिर क्या है कि मौजजात जो आपने बताए वो भी अल्लाह ताला की जो है वो निशानियां हैं, और इसके अलावा कायनात के अंदर मुख्तलिफ जो है वो बिखरी हुई जो चीजें हैं वो सब जो है वो निशानियां हैं। फिर इसके साथ एक है मुबसिरा, मुबसिरा रोशन और वाजे निशानी जिससे किसी की आंख खुल जाए, बसीरत से है। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन कालू हाजा सेहरुम मुबीन, जब फिरौन उसकी कौम के पास हमारी रोशन निशानियां पहुंची तो कहने लगे ये तो सरीह जादू है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं इसी तरह हमने कौमे समूद को जब ऊंटनी की खुली निशानी जब दी थी क्यों दी थी निशानी, सवाल अलैहि सलाम की नबूवत के तौर पर, वो आते ना समूदन ना का मुबसिरा, उन्होंने कहा था ना कोई निशानी ला तो मुबसिरा, यानी खुली निशानी की आंखें ही खुल जाए। फिर पांचवी चीज है शर्त, जैसे ऊंट फरोख्त करने के लिए ऊंट को निशान लगाकर अलहदा करना, और शर्त यानी अलामत, निशानी, हीन रात होए, निशानी, शर्त, ये भी एक अलामत है ना। कयामत की निशानियों के लिए कुरान में आया है कि क्या होगा, फहल यंजुरून इल्ला साता अंतातियहुम बगतन फकद जाअ अशरातुहा, अशरातुहा यानी जब उसकी निशानियां जो हैं वो आ चुकी हैं, तो अब ये लोग तो कयामत ही को देखते हैं कि नागहां इन पर आ वाकया हो, निशानियां जबकि ये देख चुके हैं, यानी ऐसी अलामत जो किसी दूसरे अमर से मौलिक हो। शर्त फिर है नुसुब। नुसुब भी आप देखेंगे जब किसी चीज को गाड़ा जाता है, खड़ा किया जाता है, झंडा लगाया जाता है, तो वो भी एक निशानी होती है ना, तीर लगाया हुआ है, झंडा लगाया हुआ है, या वो अपने बुत लगा देते थे, तो निशानी, इसके लिए भी निशानी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज को सीधा खड़ा करना। इसी तरह सीमा, सीमा हुम फी वजूह है मिन असर सुजूद, के उनके चेहरों पर, उनकी पेशानियों पर सजदों के निशान है सीमा। फिर इसी तरह आठवां लफ्ज है शायर, शायर भी निशानी को कहते हैं, इन सफा वल मरवा मिन शायरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा जो है वो अल्लाह की निशानियों में से है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ हैं, अच्छा है कि आपको अंदाजा हो कि देखिए एक निशानी के लिए कुरान ने जो है वो इतने अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए हैं। तो अब वो क्या कहते हैं कि ऐ मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मुकरर कर दे। काला आया तू का, कि तेरी निशानी क्या है, अल्लाह तू कल मन नासा, कि तू कलाम न कर सकेगा लोगों से, सलासा का अयामिन 3 दिन, इल्ला रमजा मगर इशारे से। तो रम्ज, रम्ज जो है इसके मानी होते हैं होंठ से इशारा करना या हल्की सी आवाज निकालने को कहते हैं। हर वो कलाम जो इशारे की तरह हो वो रम्ज कहलाता है। हाँ, रमूज औकाफ। अच्छा ये है रम्ज, दूसरा है इशारा, लफ्ज जो इशारे के लिए आता है, मुंह खोले बगैर हाथ की हरकत से किसी को कोई बात समझाना, हाथ की हरकत से उसको इशारा कहते हैं। तो रम्ज क्या है, होंठ से इशारा करना। एक है गम्ज, गम्ज गैन मा गैन मीमजा, पलकों और आबरुओं से बात जो है ना समझाना, पलकों से भी। तो आप ये देख लें कि इशारे के लिए भी कितने लफ्ज जो है वो आपको मिलते हैं। तो सबके, लेकिन इन सब में जो है वो बारीक सा थोड़ा थोड़ा जो है वो फर्क पाया जाता है। तो रम्ज इशारा, और उसके साथ क्या है गम्ज, और इन सब के अंदर जो थोड़ा सा फर्क है वो भी आपको अंदाजा हो गया कि जब होंठ से इशारा करेंगे तो क्या है, रम्ज है इशारा करना, मुंह खोले बगैर हाथ की हरकत से किसी को कोई बात समझाना तो क्या है। और फिर इसके बाद है गम्ज, जैसे वाइजा मरू बेहिम यतगा मजून है ना, तो पलकों और अबरूओं से बात समझाना, किसी जानवर को कोई चीज चबोना ताकि वो चल पड़े, ये अरबों के यहां इसके लिए भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। किसी की ऐब जुई करने के लिए अपनी पलक से, पलक के इशारा करना, और लोग करते हैं अक्सर ऐब जुई जब करते हैं तो पलक से इशारा करते हैं, हकारत से, जैसे आंखों से इशारा करना। अच्छा फिर इसके लिए एक और लफ्ज है अर्रादा, अर्रादा फला जुनाह अलैकुम फीमा अरदतुम बिही मिन खितबतन निसाह, सूरह बकरा की आयत 235। और इद्दत के दौरान अगर तुम इशारे की बातों में, कनाई की बातों में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। इसका क्या मतलब है, इशारा और कनाई में बात करना, यानी पहलूदार बात करना जो सच और झूठ और जाहिर और बातिन दोनों पर महमूल हो सकती हो, वाजे नहीं करना, इशारे में करना। तो ये है, हाँ, ऐन रा रा दाद अर्रादा, यानी अर्रादा में इशारा करना मकसूद नहीं बल्कि इशारे कनाए से बात समझाना, इशारे कनाए में। वज़कुर और जिक्र कर रब्बा का, अपने रब का, कसीरन बहुत ज्यादा, वसब्बे और तस्बीह कर बिल अशी वल इबकार। तो अशी का रूपवर्ड है ऐन शीन वो, शाम के वक्त को कहते हैं, और वल इबकार जो है ये बा काफरा बिक्र से है, और ये जो है वो कमारे को कहते हैं, और सुबह का वक्त जो होता है ना बुकरत व असीला, उसके लिए भी आता है कि सुबह सुबह के वक्त भी। तो कमारे के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ ही बिक्र से मुराद क्या है कि सुबह, बुकरा सुबह सुबह। और वैसे जो है यानी अगर आप देखें कि और क्या है, जैसे सुबह सुबह असल में ये ऑपोजिट आए हैं सुबह और शाम, तो हमें और भी ऐसे लफ्ज मिलते हैं। और आप क्या समझती हैं? हाँ, लैल और नहार, इसमें रात और दिन जो है दोनों पूरे आ जाते हैं। और इसके अलावा हाँ, अशी अशी यौम व दुहा, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है ना। और क्या आता है? अच्छा, इसके लिए हमें जो लफ्ज मिलते हैं, जैसे एक तो है असहार, सहरी का वक्त है, ठीक है। दूसरा है फजर, फिर है सुबह, फिर है इशराक, फिर है बुकरा बुकूर, फिर इसके अलावा क्या है गदा, और फिर है दोहा। दोहा तो मतलब अब इन सब में जो है वो और भी हमें लफ्ज वैसे तो देखें तो मिलते हैं, लेकिन असल क्या है कि ये दिन और रात की जो है ना मुख्तलिफ घड़ियां हैं, मुख्तलिफ उसके टाइमिंग है। तो उसमें जो है सबसे पहले तो शुरू किया आता है, शुरू इशराक से, फिर बुकूर है बुकरा, फिर गुदवा है गदू। ये दिन और रात को जो कुरान ने दिन और रात के लिए मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल किए ना सुबह से लेकर शाम तक, ये मुख्तलिफ लफ्ज है, शुरू बुकूर गुदवा दोहा हाजिरा जहीरा रवाह, फिर असर, फिर कसर, फिर सैल, फिर अशी, फिर गुरू। तो ये मुख्तलिफ लफ्ज हमें जो है वो मिलते हैं। तो यहां पर भी उनको जो बात बताई गई कि सुबह के वक्त भी करनी है इबादत और शाम के वक्त भी करनी है, तो गोया कि हर वक्त ही करनी है। वह इसकाल मलाइकातु, और जब कहा फरिश्तों ने या मरियमु ए मरियम इन अल्लाह हस्तफा की, कि बेशक अल्लाह ने तुझे जो है वो मुंतखिब कर लिया है, तेरी पाकी तेरी तहारत की वजह से तुझे चुन लिया है, तोहरा की और तुझे पाकिजगी अता की है, मस्तफा की, तो दोनों का इसका वही रूट वर्ड है। क्या है रूट वर्ड? स्वात फा वो, स्वात फा या, यानी स्वात फा वो भी है और ये भी है। अल्लाह ने साइल आलमी, दुनिया की औरतों पर, तमाम दुनिया की औरतों पर तुझे अल्लाह ने चुना है। या मरियम ए मरियमी मरियम उकनोती, उकनोती जो है इसका रूट वर्ड पहले भी कई दफा पढ़ चुकी हैं, काफ नून ता, इसके मानी है आजजी और इनकसारी के साथ अतात करना, फरमाबरदारी करना, ले रब्बे की अपने रब के लिए, वसजुदी और सजदा कर, वरकई और रुकू कर, मअर्राकेइन रुकू करने वालों के साथ। तो यहाँ पे अगर सिर्फ होता ना वरकई रुकू कर और मअर्राकेइन ना होता, तो फिर ये था कि जैसे बस ठीक है रुकू किया कर, हालांकि सजदा भी है, सजदा रुकू यानी नमाज पढ़ा कर, मार राकेन बता रहा है नमाज बाजमात, उसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है। जालिका मिन अम्बा अल गैबी, ये है खबरें गैब की। अम्बा जो है इसका रूट वर्ड क्या है?
अच्छा
गैब पोशीदा, नू ही हम वही करते हैं इसकी, इलेका तेरी तरफ। अब यहाँ पे नू ही की जमीर जो है ये किसके लिए आई है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। शाबाश, बात खत्म हो रही है, और साथ ही यानी अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन जो बात चल रही थी बीच में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गैब की खबरें हैं जो हम तेरी तरफ वही करते हैं। तो नू ही का रूपट क्या है? वोहा, या ये खुफिया और तेज इशारा इशारे को कहते हैं। अउहा, किसी पोशीदा बात और नामालूम बात के मुतालिक तेजी से इशारा करना। इसका ताल्लुक सिर्फ तालीम अकायद और जो गैब की जो खबरें हैं इनसे है। एक तो वही का लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक इल्हाम का। तो इल्हाम क्या होता है कि जैसे कोई बात अल्लाह की तरफ से मलाए आला की जानिब से किसी के दिल में डाल दी जाए, समझ है बसीरत है, कोई काम करे ना करे तो इंसान के दिल में एक बात आ जाए। एक है इल्का, डालना, तो ये भी जैसे किसी को कोई तालीम देना, तो ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तेरी तरफ हमने वही की है, क्या मतलब कि तुझे गैब की खबरें नहीं पता। वमा कुंता लदैहिम इज युल्कून अकलामहुम, आप उनके पास नहीं थे जब वो अपनी कलमों को डाल रहे थे, यानी कुर्रा कर रहे थे। अय्युहुम यकफुलु मरियम, के कौन मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत करे, सरपरस्ती करे, فَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ, اور آپ بھی ان کے پاس جو تھے وہ نہیں تھے. اِذْ يَخْتَصِمُونَ, يَخْتَصِمُونَ جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, خاص واد مین جھگڑا کرنا, خصم. واحد جمع دونوں کے لیے آتا ہے, کبھی کبھی تثنیے کے لیے بھی آتا ہے. اور مخاصمت کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کو کنارے سے پکڑنا ہے نا, اور بوری کو کونے سے پکڑ کر کھینچنا, اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو خصم جھگڑا, جب وہ جھگڑا کر رہے تھے.
ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.